بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اے محترم بھائیو بہنوں ہمارے مقدس بزرگ اور ہماری مائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں صحت میں عمر میں برکت عطا فرمائے جو وقت آپ نے اس کام کے لیے فارغ فرمایا ہے اور اس میں مجلس میں شرکت فرمائی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم سب کو خیر و عافیت دنیا میں آخرت میں خیر عافیت کا ذریعہ بنا دیں جو وقت آپ نے فارغ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ہمیں عطا فرمائے جن بزرگوں کی باتیں یہاں بیان ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کی برکات ہمیں عطا فرمائے اور انبیاء صدیقین صالحین کے ساتھ ہمارا حشر عطا فرمائے سب سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات آج ایک کتاب پڑھی جائے گی با ادب با نصیب حضرت شیخ ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی کتاب ہے اس میں سے کچھ چیزیں پڑھی جائیں گی سب سے پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات حضرت نے اس میں ادب کے بارے میں پوری کتاب لکھی ہے ادب کے بارے میں اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس قدر تنہائیوں میں پکارا گیا اس دنیا میں جس قدر اللہ کے سامنے فریادیں کی گئیں کائنات میں کوئی دوسرا اس کے ہم پایا نہ پایا گیا تمام عظمتوں بلندیوں کی معراج محبتوں اور چاہتوں کی انتہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فرماتے ہیں انسان اگر غور کرے تو اپنا انگ انگ یعنی جسم کا ہر حصہ اللہ کے احسانات میں ڈوبا ہوا پائے گا اگر اللہ تعالیٰ عزت نہ دے تو انسان ذلیل و خوار ہے اگر اللہ صحت نہیں دے تو انسان بیمار ہے اگر اللہ عقل نہیں دے تو انسان دیوانہ ہے اگر اللہ جو ہے سماعت یعنی سننے کی طاقت نہ دے تو انسان بہرا ہے اللہ اگر بولنے کی طاقت نہ دے تو انسان گونگا بیٹھا ہے اگر اللہ تعالیٰ بینائی نہ دے تو انسان اندھا ہے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اصل محسن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسن حقیقی ہے وہ اللہ جو کروڑوں کروڑوں جو ہے عقل مندوں کو عقل عطا فرماتے کتنی عقل ہوگی اللہ کے خزانے میں سارے الگوریدم اور سارے جو سیکرٹس ہیں اور فارمولاز سب اللہ کے خزانے سے آتے ہیں لوگ ان کو ڈسکور کرتے ہیں پہلے سے موجود تھے وہ لیکن ان کو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا جو اللہ لاکھوں پہلوانوں کو طاقت عطا فرماتے ہیں اللہ کے پاس کتنی طاقت کے خزانے ہوں ایک فرشتہ جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں سور کو اور جب قیامت ہوگی بس اس کا ایک پھونک دینے سے ساری یونیورس ختم اتنی طاقت اللہ کے خزانے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑوں خوبصورت لوگوں کو خوبصورتی عطا فرماتے ہیں کتنی خوبصورتی اللہ کے خزانے میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑوں ماؤں کو رحم دلی اور محبت عطا فرماتے ہیں اللہ کے خزانے میں کتنی رحم دلی ہے جو گناہ گاروں پہ اللہ شفقت کا معاملہ فرمائیں گے یہاں پر اور قیامت میں اتنی رحم دلی کہ جو کروڑوں ماؤں کو رحم دلی دے دیں تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں ہر جگہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں ایک جو ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ بیان کر کے تاکہ اس میں اللہ کی بات ہمیں سمجھ میں آئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حرم مکہ میں خانہ کعبہ میں تشریف لائے طواف کے لیے تو آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ سے ہوئی اس زمانے بادشاہت کوئی ایک ملک میں نہیں ہوتی تھی چھوٹا سا ملک یا صوبہ پورے جو ہے تین چار کانٹیننٹ پہ جو ہے مسلمانوں کی حکومت تھی تو بادشاہ ہشام جو ہے وہ آئے ہوئے تھے ان سے ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے سلام کے بعد عرض کیا کہ حضرت کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائیے عمر فاروق خلیفہ کے پوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ہشام مجھے بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ سے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی تو بادشاہ جو ہے لاجواب ہو گیا تو بھائی ادب کا تقاضا ہے کہ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے بادشاہ جو ہے چپ ہو گیا تھوڑی دیر بعد طواف کر کے باہر نکلے جب حضرت تو بادشاہ بھی اسی وقت نکلا اللہ کی شان تو جو ہے پھر قریب آیا اور ادب سے عرض کیا کہ بتائیے میں آپ کی کچھ خدمت کروں آپ نے فرمایا کہ ہشام بتاؤ میں تم سے کیا مانگوں دین یا دنیا تو بادشاہ جانتا تھا کہ دین کے میدان میں تو بہت بڑے بزرگ تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے تو کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھ سے دنیا مانگے میں آپ کی کچھ خدمت کروں تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ دنیا تو میں نے کبھی خالق و مالک سے بھی نہیں مانگی بھلا تم سے کہاں مانگوں گا بادشاہ لاجواب ہو گیا ऐसे जो है हमारे बुजुर्गान और हस्ती जो है दीन की हिफाजत की है इस तरह हुआ करते थे अपनी शान से कि भाई बात मैंने तुमसे कोई तो अल्लाह से नहीं मांगी दुनिया तुमसे कहाँ मांगूंगा। वो चलते फिरते अल्लाह की बड़ाई बयान करें, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें, तो उसके लिए हमें कुछ कलमात जो है हमें हदीस शरीफ में और उसमें आते हैं अस्कार कि कई घंटे की इबादत का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही मिदाद कलमातिही रिदा नफ्सिही वज़नत अर्शिही। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही रिदा नफ्सिही वज़नत अर्शिही मिदाद कलमातिही। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही रिदा नफ्सिही वज़नत अर्शिही मिदाद कलमातिही। जो सुबह पढ़ ले तो उसको कई घंटे इबादत का सवाब मिल जाता है। खास मसरूफ बिजी प्रोफेशनल्स के लिए है कि ऐसी चीज़ें लिख लें, याद कर लें, उनको पढ़ें। अल्लाह की पाकी है उसके अर्श के वजन के बराबर, उसके कलिमात के बराबर, उसकी मखलूक़ात की तादाद के बराबर कि हदीस शरीफ में अल्फाज आए हैं। कुछ इस्तिग़फ़ार कर लें चलते फिरते कि जो है उससे हमारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूब इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूब इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन व अतूब इलैह। एक इस्तिग़फ़ार उम्मत के लिए कर लें, उसमें उम्मत में जितने लोग हैं 1 अरब के बराबर उनके तादाद के बराबर सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा इग़फिरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहु अकबर। एक दरूद शरीफ पढ़ लें उसका बहुत सवाब है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलू। और हिफाजत की दुआएं पढ़नी चाहिए जैसे हदीस शरीफ में आएगी, तो जो इनको पढ़ लें 3 मरतबा तो किसी चीज़ से नुकसान नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वहुवा समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वहुवा समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा वहुवा समीउल अलीम। कोई तकलीफ हो पर बहुत कोई परेशानी आ जाए, हसबुनल्लाहु निमल वकील। لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوه الا بالله। ये आयत करीमा का वर्द किया जाए। दुआओं में जिक्र में असबाब से ज्यादा ताकत है। असल में हमारे यकीन की कमजोरी है कि हमारे जब जो है दुआएं और दूसरी चीजों से काम नहीं बनता फिर कहते हैं कि अब दुआ कीजिए। पहले दुआ है, बाद में भी दुआ है, बीच में जरा कुछ दौड़ भाग असबाब की है, उस पर भी यकीन नहीं होना चाहिए। असबाब इसलिए, दवा इसलिए कि वो सुन्नत है, खाने को कहा गया इसलिए कर रहे हैं, असर अल्लाह ही देंगे, ऐसा यकीन बन जाए। तो अल्लाह ताला हमें जो है सिखा दें ऐसी सिफात जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए और हमें नेक बंदों में शामिल फरमा ले। तो महली से इल्म के फजाइल पढ़े जाएंगे कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह हमें याद करते हैं। जो आदमी इल्म सीखने के लिए निकले फरिश्ते पर भी छाते हैं और मखलूक दुआओं में लग जाती है, और फरिश्तों की एक जमात जिक्र के हल्के की तलाश में रहती है, वहाँ से ऊपर नीचे जमा हो जाते हैं आसमान तक। और जो है बाज ऐसी मजलिसें होती हैं कि अल्लाह सुभान व तआला बुराइयों को नेकियों से बदल देते हैं। जो भी आदमी वहाँ से किसी दूसरी वजह से भी गुजरा, थोड़ी देर भी बैठ गया तो उसकी जो है मग़फ़िरत हो जाती है। तो ऐसी मजालिस की तलाश में जाना चाहिए। नहीं, हमारा बैठना एक नखल है ये, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला की रहमत हो जाए इसमें हमें बहुत बरकत मिल जाएंगी। इल्म का एक बाब सीख लेना 1000 रिकत नफिल नमाज का सवाब है। इल्म का एक बाब यानी वजू कैसे करना, नमाज कैसे पढ़ना, ये एक चैप्टर है नॉलेज का। असल में इल्म वो है जो अल्लाह की पहचान कराए, बाकी सब चीज़ें फ़नून है, आर्ट्स हैं। और जो चीज़ हमें दुनिया ज़िंदगी में पेश आती है रोज़ाना, उस चीज़ का इल्म, उसमें हराम हलाल क्या है, कैसे करना है, फ़र्ज़ वाजिब मुस्तहब क्या है, सुन्नत क्या है, क्या चीज़ से वो ख़राब हो जाता है, क्या चीज़ से ठीक हो जाता है, जो हमारे ज़िंदगी भर के दुनिया भर के काम हैं। तो जो आदमी जिस चीज़ में इंगेज है उस चीज़ का इल्म उसको हासिल करना है। ये नहीं कि बच्चे को कहीं स्कूल भेज दिया कि वो इल्म हासिल करेगा, मैं पकाने में हमें जो है कमाने में हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि जिस चीज़ में हम मशगूल हैं उस चीज़ के बारे में मालूम करना चाहिए कि इसके बारे में अल्लाह क्या फरमाते हैं और सुन्नत तरीक़ा क्या है। यानी हर आदमी मर्द औरत सब इल्म हासिल करें। फरमाया गया कि यानी बच्चे के गहवारे छोटी सी उम्र से लेकर कब्र में जाने तक लहद तक, महद से लहद तक इल्म हासिल करो सबके लिए। सहाबा बड़ी बड़ी उम्र में जो है इल्म हासिल किए। आज भी जो है जब गैर मुस्लिम मुसलमान होते हैं 50 साल की उम्र में तो जाकर वो जो है यानी मदीना यूनिवर्सिटी में जाके माशाल्लाह आलिम होके आए, पढ़ के आए 55 साल 60 साल की उम्र में। अभी एक बुजुर्ग आए हुए थे तो 68 साल की उम्र में आलिम हुए थे। तो इल्म की कोई इंतहा नहीं है। हम लोग तो बच्चे हैं और नियत कर लें, नियत का सारा काम है, फ़ायदा हो जाएगा। जो लोग सिर्फ अल्लाह के लिए मिले और वापस गए, कोई दुनियावी गर्ज नहीं थी, क़्यामत में अर्श के साए में होंगे। अल्लाह ताला हमें भी अता फरमा दे, नूर के मिंबरों पर होंगे। अब ये है कि नियत करें हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर, कि भाई हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए और उम्मत के हर भाई बहन से राज़ी हो जाए, हम अल्लाह के औलिया बन जाए, अल्लाह के दोस्त बन जाए। हमारी तौबा कबूल हो जाए, हम शैतान से बच जाएं, नफ्स पर काबू पा लें, गुनाहों से बच जाएं, हमारी गफलत सुस्ती काहली दूर हो जाए, और हर वक्त जो है दुआ जिक्र अच्छी बातें हमारे दिमाग में गर्दिश करने लगें, जिंदगी में सुन्नत तरीक़े आ जाएं, हमारी ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पर हो, नेकी फैलाने का जज्बा हो, उम्मत की खैरख्वाही हो, हमारी ज़िंदगी जो है उसमें सेहत सलामती चैन उम्दा रिस्क आसान रिस्क दुआओं की कबूलियत ये चीज़ें हमें मिली, और आखिरत में हमें जो है मग़फ़िरत रफ़ा दरजात जन्नत के आला दरजात ये मिले, और क्या चाहिए। ये इन चीज़ों के लिए हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है और इल्म सीखना है। तो इसमें जो सारी चीज़ इसकी जड़ है और शर्त है वो ये है कि एतकाद एहतराम अकीदत के साथ बैठ कर के सुनना कि अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, और हमारे जो है बुजुर्गान और जो अल्लाह के मकबूल बंदे गुजरे हैं वो किस तरह से यानी खुलासे में उम्मत के फ़ायदे की चीज़ें बता कर चले गए। तो अगरचे पढ़ने वाले की कोई हकीकत नहीं है, पढ़ने वाला नकली, लेकिन जिनकी बात पढ़ी जा रही है वो बहुत ऊँची चीज़। जैसे कोई डाकिया ख़त लाता है तो डाकिये को नहीं कहते कि तुम किस लिबास में आ गया, देखते हैं खत आया भाई बादशाह का खत आया, तो आदमी जो है बड़े अकीदत से पढ़ता है। तो इस वजह से हमें बहुत अकीदत एहतराम से बैठ के उसको सुनना चाहिए। फ़ायदा क्या है, अहलुल्लाह की मजालिस में उनकी बात सुनने से थोड़े दिन में आदमी दीनदार और सालेह हो जाता है, दिल का रुख पलट जाता है, और उनसे ताल्लुक़ की बरकत से अहलुल्लाह का तकवा हमारे दिल में आ जाता है। तो ये मेरे फ़ायदे की बात है, मेरी खैरखाही की बात है, बुजुर्गान जो है वो मेरा और उम्मत का भला चाहते हैं, ऐसा सोचना हमेशा, उससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह कुछ जो है वो जिक्र के फ़ायदे और कुछ तस्बीहात और कुछ दुआएं जो कम वक्त में बहुत ज़्यादा सवाब देने वाली है। ये किताब है रहमतों वाले आमाल, अमल मुख्तसर सवाब ज़्यादा, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ सखरवी साहब, इंग्लिश में इसका तर्जुमा है ईज़ी डीड्स, मस्जिद में और यहाँ पे भी मौजूद है, इंटरनेट में इस्लाम इजी साइट में इंग्लिश बुक्स में है। तो उसमें कुछ इस तरह की नेकियाँ हैं अहादीस से जमा की गई कि कम वक्त में बहुत सारा सवाब मिल जाए। जैसे कि हम लोग मसरूफ़ हैं भाई, मैं आधा घंटा ही दे सकता हूँ, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम, तो क्या मुझे मिल सकता है, तो वो इन चीज़ों की जस्तजू करें। 80 साल की इबादत का सवाब, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस नकल की गई कि जो आदमी जुमे के दिन असर के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा दरूद पढ़े, 80 टाइम्स अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा, इजी रीड की किताब में मिल जाएगा। तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे, यानी सगीरा गुनाह भूल चूक छोटी गुनाह, और 80 साल की इबादत का उसके लिए सवाब लिखा जाएगा। दार कुतनी की एक रवायत में, ये किताब का नाम है, ये दरूद अन नबील उम्मी तक है, यानी कुछ वर्ड्स कम वेश होते हैं इसमें। इस रवायत को हाफिज इराकी ने हसन बताया है, यानी हदीस का दर्जा, और जामे उस सगीर एक किताब है उसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पर हसन की अलामत लगाई है, यानी फजाइल के बाब में इस पर अमल कर लेना चाहिए, इसमें कोई जो है नुकसान नहीं है। दूसरी रवायत है, हज़रत ने लिखी है मुफ्ती साहब ने, तरगीब व तरहीब एक किताब है, उसमें से रवायत ली है, अब्दुल्ला बिन औफा रदी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन अबी औफा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक मरतबा कह ले ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू अहदन समदल लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू अहदन मदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो चौथे कलमे के कुछ टुकड़े हैं, सूरह इखलास के कुछ टुकड़े हैं। तो जो आदमी ये पढ़ेगा उसको 20 लाख नेकियां मिलेंगी, 2 मिलियन गुड डीज अल्लाह के दरबार में से मिलेंगी। तो हज़रत फरमाते हैं कि अगर आदमी हर नमाज के बाद एक दफ़ा कह ले 5 नमाज तो दिन में 1 करोड़ नेकियाँ ले जाएगा, दिन में 10 मिलियन जो है वो गुड डीड लेके जाएगा, तो आखिरत में काम आएंगी नेकियों के पहाड़। किसी को इशारे सवाब कर दिया, दादा नानी सवाब पहुंचा दिया, उनको जो है आखिरत में दर्जात बुलंद हो गए। कितना ही मसरूफ हो आदमी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर पढ़ ले। इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि जो आदमी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहे तो उसके लिए 1,24,000 नेकियाँ लिखी जाती हैं। ये कंजुल अमाल से लाया गया है, रवायत है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहने से 1,24,000 नेकियां लिखी जाती है। वह इसकी एक तस्बीह पढ़ ले आदमी, 33 मरतबा पढ़ ले, 10 मरतबा पढ़ ले, इसके साथ जो है सुबहान अल्लाह अलअज़ीम भी मिला ले। इन अल्फाज की बहुत सारी रवायतें हैं, सुबहान अल्लाह बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अलअज़ीम, सुबहान अल्लाह अलअज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह, تو مختلف روایتیں ہیں، کوئی منتخب احادیث میں دیکھ لیجئے، کوئی بھی کتاب اذکار کا باب اس میں دیکھ لیجئے، تو ایک تسبیح اللہ کی بڑائی کی ضرور پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے مسجد کام کاج اس میں جو ہے اللہ کا ذکر جو ہو جائے، دماغ پہ بوجھ نہیں ہو، سلانا نہیں ہو، دوسرے کو تنگی نہیں ہے، دل ہی دل میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو کھانے میں نور ہوگا، بچوں کے جو ہے وہ حفاظت ہوگی، گھر میں فرشتوں کی آمد ہوگی، دین کے کام سمجھ میں آئیں گے، اور جو ہے شیطان بھاگ جائے گا، اور بہت ساری زبان کی چیزوں سے، مختلف چیزوں سے ہمیں بچ جائیں گے، اور بیکار مشغلوں سے دل گھبرائے گا، ذکر کے فائدے، دل کو تقویت دے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رحمت نازل ہوگی، تو اس امت کو ایسے کام بتائے گا کہ کم وقت میں بہت سارا ثواب لے جاؤ، الحمدللہ کا ثواب ترازو کو بھر دے گا، یعنی اسکیل کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ثواب آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، بازار میں چوتھا کلمہ پڑھ لے کوئی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,000,000 نیکیاں لکھ دے گا، اور 1,000,000 گناہ جو ہے وہ یعنی صغیرہ گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیں گے، اور 1,000,000 درجے بلند فرمائیں گے، اتنی فضیلت، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے، تو حضرت یہ جو ہے مفتی عاشق الہی صاحب کی کتاب ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، تو اس میں انہوں نے ایسی روایتیں جمع کی ہیں، اور لکھا ہے کہ مشکات شریف کی حدیثوں میں ہے، یعنی کوئی بھی آپ حدیث میں اذکار کا باب لے لیں، آپ کو اس قسم کی روایتیں مل جائیں گی، جو آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس جگہ بیٹھے بیٹھے سورج نکلنے تک اللہ کو یاد کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اس کو پورے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، بھائی چھوٹے چھوٹے عمل اور بہت بڑے بڑے ثواب، چھوٹے چھوٹے عمل بہت بڑے بڑے ثواب، یعنی کوئی آدمی 5 منٹ بھی نکالے کہ بھائی میرے پاس جو ہے 5 منٹ ہیں، اس میں ایسی ایسی چیزیں پڑھ لیں، الحمدللہ اس طرح سے درود شریف پڑھنا چاہیے، 1 دفعہ درود شریف پڑھیں گے 10 دفعہ اللہ کی رحمت آئے گی، فرشتوں کا درود بھیجنا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجنا، اس سے جو ہے گناہوں کا کفارہ، اعمال کا پاکیزہ بنا دینا، درجات بلند ہونا، گناہوں کی معافی، خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کے لیے، اور نام اعمال بک آف ڈیڈ میں ایک پہاڑ کے برابر ثواب لکھا جانا، اور اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا، جو آدمی اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا دے، ہر وقت درود شریف پڑھ رہا ہے، تو دنیا آخرت کے سارے کام آسان ہو جائیں گے، خطرات سے نجات ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اللہ کی رضا، اس کی رحمت کا نزول، اور ناراضگی سے امن، درود شریف کی ایک تسبیح میں ہو تو 50, 9, 10 مرتبہ 3 مرتبہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے، کہیں دیوار میں لکھ کر رکھا ہے کوئی چیز، کوئی پرچہ ہے، کہیں ڈائری میں ہے کہ ہمیں کچھ درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور یہ جو ہے اذکار، درود شریف، اور یہ سبحان اللہ بحمدی، اور یہ چیزیں پڑھنے کے لیے، ان کے لیے تو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ وضو کر کے بیٹھے باوضو ادب سے مسلح پہ بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن چلتے پھرتے بھی ذکر ہو جائے تو وہ بھی بہت ثواب ہے، تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، درود شریف کی کتابیں بھی آتی ہیں، 40 درود، چہل درود شریف، زاد السعید، اس طرح اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں درود شریف کی اوتھینٹک کتابیں ہوتی ہیں، جو کہ احادیث میں سے ہیں، کہ یہ جو ہے درود شریف خود سکھائے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، تو ان کو ایک کلیکشن کے طور پہ، کبھی نہیں ہو سکے تو جمعے کے دن تو پڑھ ہی لے آتے، 5 منٹ لگتے ہیں کہ درود شریف کی ایک کتاب پڑھ لی جائے جمعے کے دن، جمعے کے دن براہ راست پیش کیا جاتا ہے، اور جو زیادہ درود شریف پڑھیں گے تو حج عمرے پہ جانا آسان ہو جائے گا، مدینہ منورہ کی طرف کھینچ لیا جائے گا، یہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو زیادہ درود شریف پڑھے گا اس کو مدینہ شریف کی طرف کھینچ لیا جائے گا، بھائی اور کیا چاہیے، مدینہ شریف پہنچ گئے، اللہ اکبر، اچھا اب جو ہے نیتوں کا ایک سبق ہے کہ ہم روزانہ کے جو کام کرتے ہیں یا کبھی سفر پر گئے تو اب اس میں کیا نیت ہو کہ وہ بھی ہمارا دین بن جائے، کیا اچھی باتیں ہم سوچیں، جیسے مردوں کو اکثر جو ہے سفر پر روزانہ ہی جانا ہوتا ہے جاب کے لیے باہر وغیرہ، تو جب ہم گھر سے نکلے تو علم حاصل کرنے کی نیت کر لیں کہ آج میں کوئی اچھی بات سیکھوں گا، اس کے لیے جاتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے جاتا ہوں، وہ تو نیت ہے ہی سب سے پہلے، اور جو ہے حلال رزق کی تلاش میں جاتا ہوں، ایک یہ نیت ہے، ایک نیت ہے کہ میں صلہ رحمی کے لیے رشتہ داروں سے ملاقات، ان کی خیریت، ان کی خدمت کے واسطے جاتا ہوں، گھر سے نکلا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، میں وہ فضیلت حاصل کرنے کو جاتا ہوں، راستے میں دعا کروں گا دعا قبول ہوگی، اور نیک عمل کا جو موقع مل جائے، عبادت، خدمت، تعلیم، جو موقع ہو وہ میں کروں گا، گھر سے نکل کر نیت کر لی، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، پہاڑ، دریا، درخت، وہ دیکھ کر میں اللہ کو یاد کروں گا، اس کے لیے سفر کرتا ہوں، بد نظری سے بچنے کی نیت کر لے، بھائی آج کے دن کسی نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، نظریں نیچی کر کے جاؤں گا، तो उसकी नियत हो, बहुत ज़रूरी है आज की यहाँ के माहौल में सेहत हासिल करने की नियत। हदीस शरीफ में आया कि सफ़र करो और सेहतमंद हो जाओ, और बहुत बीमार है सेहत सफ़र पर चला जाओ। मुसलमानों की मदद की नियत, उनके हालात मालूम करके मदद खिदमत हो सके। रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ दे कोई चीज़ है उसको हटाने की नियत, कोई कोई दरख्त जो है मुश्किल कर रहा था, कोई कांटा पड़ा हुआ था थोड़ा सा उसको आसान कर दिया। मस्जिद कोई मिले तो उसमें नफली एतकाफ करने, नमाज जिक्र तिलावत करने की नियत के भाई सफ़र पर जा रहे हैं कहीं स्टॉप हुआ यहाँ पे कोई मस्जिद है उसमें अल्लाह का जिक्र करेंगे। हज उम्रे की तैयारी की नियत, इस नियत से सफ़र करना कि मुझे आदत हो जाए कि मैं अल्लाह के रास्ते में हज उम्रे को जाया करूँगा, अगर मैं ट्रेन हो जाऊँ थोड़ा सा। बुज़ुर्गों अहलुल्लाह से मुलाकात के लिए जाना, दीनी उमूर में उलमाए कराम मुफ्ती साहबान उनसे मशवरे के लिए सफ़र करना, मसाइल पूछने के लिए सफ़र करना, वालदैन से मिलने उनकी खिदमत की नियत से जाना, कोई हर नेक काम अंजाम देने बुराई से बचने की नियत। अतः कहीं कोई गया आदमी कोई साइड सीन पे कोई इबरतनाक मुकाम है तो उससे इबरत लेने की कि देखो अल्लाह का यहाँ पे अजाब किस तरह आया और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, तो सफ़र पर जाए तो इन चीज़ों को सोचता हुआ जाए तो उसको उसकी नियत से सवाब मिलेगा, की नियत से सवाब मिलेगा। ये हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताब है पुरनूर दुआएँ, अंग्रेजी में रेडियंट प्रेयर्स, छोटी पॉकेट बुक आती है उसमें हर मौके की दुआएं हैं कि मिसाल के तौर पर आदमी घर से बाहर निकले तो क्या पढ़े। अब ये तालीम के वास्ते है, तरगीब, ज़रूरी नहीं कि ये सारा आप याद कर लें और हमेशा ही पढ़ें। खुलासा ये है कि उर्दू में अंग्रेज़ी में अपनी ज़बान में कुछ ना कुछ तो पढ़ लें। जब आदमी घर से निकले तो ये कहे, एक रवायत में है इब्न सुन्नी रवायत किताब का नाम है, आमन तो बिल्ला व आतफ़म तो बिल्ला व तवक्कल तो अल्लाह व ला हौल व ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मैं अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह का सहारा पकड़ता हूँ, अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, अल्लाह के सिवा कोई ताकत व क़ुव्वत नहीं दे सकता। इसका एक इसकी वेरिएशन है बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह व ला हौल व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्ला। उसमें शैतान कहता है अपने दोस्तों से कि तुम इस आदमी को गुमराह नहीं कर सकते, ये बिन गाइडेड प्रोटेक्टेड इसको कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो पढ़ लेना चाहिए। एक और दुआ हजरत ने लिखी है, ये मुख्तलिफ रवायतों में से है, मुख्तलिफ रवायतों में से, اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي। اے اللہ میرے سامنے سے میری حفاظت فرمائیے, میرے پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, اور میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے نیچے سے مجھے کوئی دھوکہ دے کے نقصان پہنچایا جائے۔ اردو میں انگریزی میں تو مانگ ہی سکتے ہیں کہ اللہ میں جا رہا ہوں گھر سے باہر, فتنے ہیں, اللہ مجھے ہر طرف سے حفاظت فرمائیے, آگے پیچھے, دائیں بائیں۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين۔ يا حي يا قيوم, میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے تمام کاموں کو درست کر دیجئے اور مجھے ایک پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ فرمائی۔ اب بتائیے اگر یہ دعا قبول ہو جائے کہ اللہ مجھے ہر وقت مجھے حفاظت کیجئے اور میرے نفس کے حوالے نہیں کیجئے تو آدمی کوئی گناہ کرے گا ہی, گھر سے نکلا دعا کر لی۔ اللهم افتح لنا ابواب ورحمتك ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك۔ اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے اور ہمارے لیے رزق کے دروازے آسان کر دیجئے۔ جاب آسان, جلدی سے کام ختم, کیا کرا باہر کس نے نکلے تھے کچھ جو ہے خدمت کرنے کے لیے, بھائی اللہ سے مانگ لیے, اللہ میں جا رہا ہوں میرے پاس طاقت ہے نہیں, آپ دے دیجئے جلدی سے فارغ کر کے واپس لا دیجئے۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اللہ اپنی حلال چیزوں کو میرے لیے اتنا کافی بنا دیجئے کہ آپ کی حرام چیزوں سے بچ جاؤں, اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر مخلوق سے بے نیاز کر دیجئے کہ اور کسی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ دعائیں اگر ایک دفعہ بھی قبول ہو گئیں کام ہو گیا, زندگی بھر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی جو حدیث شریف کی دعائیں ہیں جو صحابہ سے منقول ہیں ان کو پڑھیں گے تو ان میں اور نور ہے, اور عربی کی یاد نہیں ہو پائیں تو ان کو اردو میں مفہوم پڑھ لیں, انگریزی میں پڑھ لیں۔ تو یہ کتاب ہے پرنور دعائیں, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں, یہ ضرور جو ہے لے لیں۔ ریڈینٹ پریئرس کے نام سے انگریزی میں آتی ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو کیا پڑھے, کوئی جو ہے چھوٹا بچہ ہے کوئی اس کے لیے کیا پڑھا جائے, ہر قسم کی دعائیں پوری مجموعہ ہے اس کے اندر, تو اپنی جیب میں ہونے چاہیے۔ پر نور دعائیں کوئی پڑھا, دو منٹ پڑھی رکھ دی, دو منٹ پڑھی صبح شام, تھوڑے دن میں یاد ہو جائیں گی۔ تو یہ دعائیں ہیں یہ صرف بچوں کو اسکول میں یاد کرانے کو نہیں ہوتی ہیں, اصل میں مسئلہ ہمارا ہے, ہمارے ہمیں بھی سیکھنی ہے یہ۔ تو جو ہے یہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ساری جو ہے دعائیں اور چیزیں اور اس قسم کی باتیں ہم لوگ زندگی میں لے آئیں۔ ये किताब है हजरत शेख जुल्फ़िकार साहब दामत बरकातहुम की अदब के बारे में, पूरी किताब लिखी है उन्होंने, बच्चों का अदब, तालीम का अदब, उस्ताद का अदब, किताब का अदब, बहुत ज़रूरी, पढ़ने के काबिल है। बा अदब बा नसीब, फरमाया जिसको जो कुछ मिला है अदब की वजह से मिला है। इसमें कुछ चीज़ों का अदब हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि क्या इसमें कितनी जो है वो डेप्थ है। वालदैन का अदब, माँ का अदब, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सुल्तान बायजीद, जो लोग बताते हैं बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने जो कुछ भी अता फरमाया वालदा की दुआओं से अता फरमाया। किसी ने पूछा वो कैसे, फरमाया जब मैं छोटा था लड़कपन में एक मरतबा अम्मा ने पानी मांगा, जब मैं लेके गया तो अम्मा सो चुकी थी, तो मैं प्याला हाथ में लेके सारी रात खड़ा रहा, सर्दी शदीद थी कि जिस्म कपकपा रहा था, थरथरा रहे थे सर्दी से, लेकिन पानी लेके हटे नहीं, मालूम नहीं कब उठ जाए। जब वालदा की आंख खुली, उन्होंने खड़े इंतज़ार करते हुए देखा तो खुश होकर बहुत दुआएं दी। तो उन दुआओं की बरकत से शेख फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे लिए वलायत के रास्ते खोल दिए। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, भाई सारे दुनिया में जो है उनकी फ़िक्र और मसाइल और सारे मुफ्तियां कराम मसले उनकी किताबों में से निकालते हैं। हज़रत इमाम अपनी वालदा का बहुत अदब फरमाते थे। उनकी वालदा को जब कोई मसला फतवा मालूम करना होता तो वो उनसे नहीं पूछती, वो कहती हैं फलां एक बुजुर्ग बूढ़े एक आलिम हैं, उनके पास जाके मसला पूछना है। तो इमाम जो है बहुत अदब से, ये नहीं कहते थे कि मुझको ज़्यादा मालूम है, मुझसे मेरी किताबें हैं सारी आज दुनिया में चलती हैं। वो अम्मा को ऊँट पे सवार करा के पर्दे में और लेके जाते थे तमाम से दूसरे आलिम के पास। अब वो रास्ते में जब देखते लोग कि इमाम आ रहे हैं तो दोनों तरफ खड़े होकर लोग सलाम करते उनको कि इमाम जा रहे हैं। तो जब वो पहुँचते वहाँ पर आलिम साहब के पास, तो वालदा जो है उनसे मसला दरियाफ़्त करते पर्दे में। कई मरतबा ऐसा होता कि वो बूढ़े आलिम को मसला सही मालूम नहीं होता, तो वो चुपके से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से पूछते कि इसका जवाब क्या है। तो इमाम उनको खामोशी से ऐसे बता देते कि वालदा को पता नहीं होता। तो उसके बाद जो है फिर ऊंची आवाज़ से जो है वो वालदा को बता देते। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तवाज़ो और अदब का ये आलम था कि सारी ज़िंदगी वालदा पे जाहिर ना होने दिया कि जो फतवे आप उनसे पूछती हैं वो मैं ही तो बताता हूँ। ये इसलिए था कि उनकी वालदा की तबीयत जिस तरह मुतमईन हो जाए, मुतमईन होनी चाहिए, इस अदब एहतराम के सदक़े में इमाम आज़म है। ऐसा अदब है वालदैन का, कोई जो है ना साधा कि वो जब कहते उनको लेके जाते और उनको जो है मसले वो पूछ के आते। अब्दुर्रहमान बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 20 साल रहा, उसमें से 18 साल अदब और अखलाक की तालीम में खर्च हुए। 18 साल अदब सीखा, 2 साल इल्म सीखा। ये उस जमाने की बात है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खुद जब छोटे थे, ये हजरत शेख इब्राहिम साहब ने बयान फरमाया कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत छोटे से थे तो उनकी वालदा उनको सुन्नत लबास पहनाकर उनके सर पे इमामा बांध के मस्जिद नबी शरीफ में भेजती थी कि जाओ वहाँ जाके बैठो, वहाँ जो है दर्स हो रहा है। मुझे मालूम है कि तुम कुछ नहीं समझोगे, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, लेकिन तुम अदब सीखोगे वहाँ के बैठते कैसे। तो इतने बड़े इमाम बने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। जब उनका दर्स होता था मस्जिद नबी शरीफ में तो शागिर्द जो है वो दरवाजे में वो जो है वहाँ से लेके पूरे यानी गलियों में खुशबू बखेर देते थे और लोगों को पता चलता था कि आज जो है ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का दर्स हो रहा है। वो खुशबू ऐसी थी कि कहीं मिलती नहीं थी, हत्ता कि खलीफा को जो है बादशाह वक्त को पता चला तो उसने मंगाने की कोशिश की कि यहाँ से आती है अहले यमन से, बादशाह ने कहा मुझे भी थोड़ी सी भेजो, उन्होंने कहा 2 साल तक इमाम मालिक का ऑर्डर बुक है, आपके लिए नहीं दे सकते। तो उनको पता चला, उन्होंने कहा चलो एक संदूक एक जो है खुशबू का एक टुकड़ा उन बादशाह को ही भेज दो। जब बादशाह को वो मिला थोड़ा सा खुशबू तो लोगों ने कहा ये बादशाह अब बादशाह हुआ है। तो उस जमाने में इल्म की ऐसी फजीलत होती थी, इल्म की ऐसी फजीलत। जैसे अभी बताया कि बादशाह आ गया हरम में, उमर फारूक के पोते ने उनको कहा मैं वहाँ मुझे कोई जरूरत नहीं आपसे पूछने। तो भाई जिस जमाने में इल्म का जो है ना इतना चर्चा था तो मुसलमान जो है हकीकत है। हजरत ने लिखा है कि तालिब इल्म उस्ताद के अदब के बगैर इस इल्म हासिल ना कर सकेगा ना नफा उठा सकेगा। जो शख्स मंजिल पर पहुंचा अदब की वजह से पहुंचा, जो गिरा है वो बेअदबी की वजह से गिरा है। मसल मशहूर है, उन्होंने तर्जुमा किया है, ऐ मुखातिब क्या तूने नहीं देखा कि इंसान गुनाह करने की वजह से काफिर नहीं होता बल्कि गुनाह को हल्का समझने की वजह से और बेअदबी की वजह से हो जाता है। कर लिया तौबा कर लिया, लेकिन उस पर अड़ गया कोई नहीं इसमें क्या है, तो बड़ा मसला। امام صاحب امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص چاہے کہ اس کا بیٹا عالم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ مسکین علماء غریب علماء کی نگہبانی کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کو کھلائے پلائے. اگر بیٹا عالم نہ ہوا تو پوتا ضرور عالم ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بعض دفعہ استاد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سواری پکڑ لیتے، سب ادب کی وجہ سے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بچپن کا حال لکھا ہے، بہت امپورٹنٹ، پوری دنیا میں ماشاء اللہ ان کی فقہ چلتی ہے. ان کے استاد تھے حماد رحمۃ اللہ علیہ. تو استاد کی بہن فرماتی ہیں تاریخ کی کتاب میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کی روئی دھنتے تھے، یعنی جو روئی کے ذریعے رضائی بنائی جاتی سردیوں کے، تو امام ابو حنیفہ وہ تیار کرتے تھے اور بازار سے دودھ اور سبزی خرید کے لایا کرتے تھے اور اس طرح کے بہت سارے کام کرتے تھے حماد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے گھر کے. تو اس سے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ حماد کے گھر کا یہ خدمتگار شاگرد تمام عالم کا شیخ بن گیا. اب اس کے بعد اس میں ایک اور واقعہ ہے، پھر دوسری چیز پڑھی جائے گی. خلیفہ ہارون رشید، اب یہ اس زمانے کے خلیفہ تھے، ایک آدھ چھوٹا ملک نہیں، چار کانٹیننٹ پہ ان کی جو ہے وہ حکومت ہوتی تھی. خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو شیخ اسماعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تربیت کے لیے بھیجا. ایک دن ملنے گئے تو دیکھا کہ شہزادہ پانی ڈال رہا ہے اور شیخ وضو کرتے ہوئے پاؤں دھو رہے ہیں. شہزادہ پانی ڈال رہا ہے اور پرنس جو ہے پانی ڈال رہا ہے اور جو ہے شیخ وضو کر کے پاؤں دھو رہے ہیں. ہارون رشید نے شیخ سے کہا کہ میں نے تو بیٹے کو تربیت کے لیے بھیجا تھا، آپ اس کو ادب سکھاتے تو کتنا اچھا ہوتا، یعنی جو ہے آپ اس کو ادب سکھاتے تو کتنا اچھا تھا. تو شیخ نے فرمایا کہ پانی ڈال تو رہا ہے. تو ہارون رشید نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ اس کو حکم فرماتے کہ یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے، تب ادب سیکھے گا. بادشاہ نے کہا، وہ زمانے کے بادشاہوں کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ میرا جو بادشاہ زیادہ ہے وہ ایسے جا کے جو ہے نا بزرگ کی خدمت کرے گا تو اس کے یعنی دل سے جو ہے دل کی صفائی ہوگی اور پھر جو ہے اس کے علوم چمکے. مجھے یہ کہا کہ یہ تو یعنی آپ اپنے ہاتھ سے پیر مل رہے ہیں، ایسا نہیں اس سے ہی ایک ہاتھ سے ڈلوائیے دوسرے ہاتھ سے پیر دلوائیے. بادشاہ نے تو وہی بہترین علم سیکھنے والے وہ ہیں جو عقیدت اور احترام سے بیٹھے، باوضو بیٹھے، سب کام چھوڑ کے متوجہ ہو کے بیٹھے، یا آدمی قبلہ روح ہو سکے تو بیٹھے، مسلح پہ کرسی پہ کہیں بیٹھے، کاغذ قلم ہاتھ میں ہو کہ بھائی کوئی اچھی بات ہے لکھ لیا، دھیان ہو، طلب ہو، شوق ہو، دعا ہو، ذکر ہو کہ اللہ یہ سب اچھی باتیں مجھ کو سکھا دے، اور کوئی بری چیز کا ذکر ہے تو یا اللہ یہ سب بری باتیں میرے اندر سے دور کر دیجئے. نرم دل، بات کا اثر لینے والے، تو کیا ہوگا کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی بات میں اثر ہو جائے گا. تو ہم جو ہے وہ ادب سیکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ بیٹھے ہیں، ایک نیت یہ بھی کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ادب عطا فرمائے. یہ حضرت کی کتاب ہے مفتی عاشق الہی صاحب کی، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، میدان حشر، اس میں جنت کا ذکر، قبر کے جیسے احوال بتائے گا کہ مومن کا بہت ہی وارم ویلکم ہوتا ہے جب اس کی آخری وقت آتا ہے. تو اس سے متعلق دو ایک چیزیں پڑھی جائیں گی اور جنت کا تھوڑا سا بیان تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اس کی نیکیوں سے پہنچتی ہیں ان میں ایک علم ہے جس کو اس نے پھیلایا ہو، یا نیک اولاد چھوڑی ہو، یا کوئی قرآن شریف ورثے میں چھوڑ گیا ہو، یا مسجد تعمیر کرا گیا ہو، یا مسافر خانہ بنا گیا ہو، نہر جاری کر گیا ہو، اپنی زندگی میں ایسا صدقہ کر گیا ہو جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے. صدقہ جاریہ، اللہ ہمیں بھی توفیق دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا. وہ کہے گا کہ اے اللہ یہ مجھے درجہ کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا جس کی وجہ سے تجھ کو یہ مرتبہ ملا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میت اپنی قبر میں ایسا محتاج ہوتا ہے جیسا کوئی ڈوبتا ہوا ہو، کوئی آدمی ڈوب رہا ہو پانی میں، پھر فرمایا کہ دعا کا منتظر رہتا ہے جو اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اسے پہنچ جائے. جب اس کو کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا میں اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ اس کو وہ دعا محبوب ہوتی ہے. بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرماتے ہیں، اور زندوں کا ہدیہ یا تحفہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے. जो जो है हमारे आबा अजदाद बुजुर्गान गुजर चुके दादा परदादा, तो उनके वास्ते जो है नेक अमल का सवाब उनको दुआ की जाए, इस्तिगफार किया जाए, पहुँचाया जाए, अपने सवाब में कमी नहीं होगी, उनको ही मिल जाएगा, उनको ही मिल जाएगा। क्योंकि जितनी अच्छी बातें होती हैं आदमी आगे भी सवाब पहुँचा। मोमिन को मलकुल मौत का सलाम। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मलकुल मौत अल्लाह के मकबूल बंदे के पास आते हैं तो उसको सलाम करते हैं। ये सब जो है हज़रत ने नीचे रेफरेंसेस लिखे हैं, मिश्कात की है, ये इब्ने माजा की है वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो है हम लोग यानी तफसील में नहीं जाते, किसी को भी रेफरेंस देखना हो तो किताबें लेके बाद में हमसे देख लें। मलकुल मौत बंदे के पास आते हैं तो उसको सलाम करते हैं, इरशाद फरमाते हैं तुम पर सलाम हो अल्लाह के दोस्त, उठो और उस घर से निकलो जिसको तुमने ख्वाहिश नफ्स को कुर्बान करके बर्बाद किया है। दुनिया में अपने आप पे कंट्रोल करके बहुत सारे काम नहीं कर सके, इस घर से निकलो, उस घर को चलो जिसको तुमने इबादत करके आबाद किया है। इशारत देखे मिला, खुश हो के फरिश्तों की कतार लगी हुई होती और जो है बहुत खूबसूरत फल फूल फूलों की टहनियाँ और इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। तो मोमिन बंदे का इकराम ही इकराम है। जन्नत किस चीज़ से बनी है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत किस चीज़ से बनी है? फरमाया कि एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, एक गोल्ड एक सिल्वर, उसका मसाला तेज़ खुशबूदार मुश्क है, परफ्यूम से जोड़ा गया है। जो आदमी जन्नत में दाखिल होगा हमेशा नियामत में रहेगा, कभी मोहताज नहीं होगा, हमेशा जिंदा रहेगा, कभी मौत नहीं आएगी। जन्नतियों के ना कपड़े पुराने होंगे ना उनकी जवानी फना होगी। सूरह हदीद में आयत है साबिकु इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी वसअत, जिसकी यानी लंबाई चौड़ाई आसमान जमीन के वसअत से बराबर है, उन लोगों के वास्ते तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। एक रवायत में है कि छोटे से छोटे दर्जे का जन्नती 1000 साल की मुसाफत में अपनी नेमतों को देखेगा। ट्रैवलिंग डिस्टेंस 1000 ईयर्स, कहीं से चढ़कर देखेगा इतनी नेमतें, इतनी बड़ी किंगडम मिली। एक रवायत है कि अदना जन्नती, छोटे से छोटे जन्नती को जो जगह मिलेगी पूरी दुनिया और दुनिया में जैसी 10 गुनी जगह के बराबर होगी। सियाटल, वाशिंगटन, अमरीका, यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, इसकी बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया उससे 10 गुना बड़ी जन्नत, और 70 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए। भाई वो जो है उसके लिए मेहनत करनी है। दुनिया की चीज़ें सिर्फ मिसाल के तौर पे हैं, फल फूल जवाहरात लिबास मकान सवारी सैंपल के तौर पे हैं, ट्रेलर है थोड़ी देर का। असल जो है सब चीज़ों की वो जन्नत में है। खूबसूरती की इंतहा, लज्जत की इंतहा, आराम खेल कूद की इंतहा, खुशी की इंतहा, और जो है जवाहरात मलबूसात मकानात की इंतहा, सेहत जवानी की इंतहा, किसी भी चीज़ का जो एक्सीलेंस है वो जन्नत में है। यहाँ सिर्फ ट्रेलर है थोड़ी देर के लिए। दुनिया की चीज़ों की तादाद भी कम है, क्वालिटी भी मामूली है, और उससे फ़ायदा उठाने का वक्त भी बहुत कम है। आखिरत की चीज़ों की तादाद भी बहुत ज़्यादा, क्वालिटी भी ज़बरदस्त, फ़ायदा उठाने का वक्त भी हमेशा हमेशा। जन्नत के महल में सोने चांदी का महल है, न झाड़ू लगाना है, न किराया, न टैक्स भरना, न सफाई, न धुआं, न बदबू, न बाथरूम, न मोल्ड, न कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खेल कूद आराम तफरी, तो जो है वहाँ खुश खुश रहना। तो उसके लिए मेहनत करनी है। और पहले अर्ज़ किया गया था कि ये इम्तहान गाह है, तो इम्तहान ख़त्म होगा तो सब लपेट लिया जाएगा। कायनात का छोटे से छोटा ज़र्रा जो है, जो भी सीन सिस्टम है, ये सब यहीं रह जाएगा, और आदमी का अमल और उसकी बातें ये उठा ली जाएंगी बुक ऑफ डीड में। तो इम्तहान ख़त्म होता है तो कागज़ लपेट के रख देते हैं, तो बस इम्तहान ख़त्म हुआ, सारी दुनिया को लपेट के समझो गारबेज में डाल दिया। अब आदमी जो है वो अपने आमाल लेके आगे चला गया। तो मुबारक है वो शख्स जो अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश रखता हो, जान माल से अल्लाह की रज़ा की फिक्र करे। अल्लाह ताला हमें जो है जन्नत का शौक़ अता फरमा दे। अब जो है इन तरगीबों के बाद जो है एक चीज़ पढ़ी जाएगी जो बहुत सबके काम की है, हमारे अपने फ़ायदे की बात है, वो ये है कि भाई जन्नत के लिए जो है वो हम अपनी नमाज़ों का हिसाब ठीक कर लें। नमाज जो है वो मोमिन का नूर है, जन्नत की कुंजी है, आँखों की ठंडक है, और गोया अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाना है। और अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि आदमी सजदे में पड़ा रहे, सबसे महबूब हालत है कि आदमी सजदे में हो। और कोई चीज़ अल्लाह ने ईमान और नमाज से ज़्यादा अफजल फ़र्ज़ नहीं की, अगर करते तो फरिश्तों को हुक्म देते, लाखों फरिश्ते कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क्याम में है, लाखों लाखों बरस से इबादत कर रहे हैं। हमारी इबादत एक छोटा सा स्नैपशॉट है, 70 साल के लिए गुजरे यहाँ से, उसमें जो है सारे फरिश्तों की इबादत उसमें जमा है, कभी रुकू में, कभी क्याम में, कभी सजदे में, सब फरिश्तों की इबादत का मजमूआ 5 मिनट में दे दिया कि हमारे दरबार में आओ, जो चाहो मांगो। ज़मीन के जिस हिस्से में अल्लाह की याद की जाए वो जो है आसमान वालों के लिए चमकता है और दूसरे हिस्सों पर फख्र करता है, तो भाई तुम्हारे अपार्टमेंट में कोई नमाज पढ़ी गई आज, मेरे अपार्टमेंट में पढ़ी गई। एक पहाड़ कहता है तुम्हारे ऊपर किसी ने जिक्र किया अल्लाह का, मेरे ऊपर किया। यानी ये चीज़ें अल्लाह ये फख्र करती हैं एक दूसरे से कि भाई तुम्हारे, जैसे लोग पूछते तुम्हारी कितनी आमदनी है, तो एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से पूछता है क्या तुम्हारे ऊपर कोई अल्लाह का जिक्र करने वाला गुजरा, मेरे ऊपर से तो गुजरा। तो ऐसी जो है कंपटीशन है। वही नमाजें जहाँ अगर किसी की रह गई हैं तो उनको दोहराना चाहिए। इसके कुछ सवाल आए थे, इस वजह से एक मजमून पढ़ा जाता है कज़ाए उमरी का। फरमाया हदीस में कि बंदे में से सबसे पहले जिस चीज़ का सवाल होगा वो नमाज है, अगर वो ठीक हुई तो सारे आमाल ठीक होंगे और ख़राब निकली तो सारे आमाल ख़राब निकलेंगे। एक हदीस शरीफ में है, जिस आदमी की एक भी नमाज रह गई ऐसा है गोया उसके घर के लोग और माल और दौलत सब छीन लिया गया। अब इंसान चूंकि खता का पुतला है, भूल चूक हो जाती है, कभी अगर नमाज रह गई हो, अभी जिस जमाने से बालिग हुए हम, तो आदमी को चाहिए कि मरने से पहले पहले वो नमाज लौटा ले, फर्ज नमाज लौटा ले और जो है उसका हिसाब कर ले और थोड़े थोड़े करके पढ़ता रहे, तो उसमें जो है एक दिन वो सब हो जाए। और जो रह जाए तो जो है वसीयतनामे में लिख दे कि इतनी नमाजें रहती हैं उनका फिदिया दे दिया जाए, इतनी नमाजें रहती हैं फिदिया दे दी जाए। अच्छा, ये चीज़ दलील से साबित है, ऐसा नहीं कि एक तौबा कर लिया तो सब नमाजें माफ़ हो गई, नमाज लौटानी पड़ेगी। तौबा इसकी तो भाई गुनाह माफ़ हो गया कि आपने नमाज नहीं पढ़ी थी कोई, लेकिन जो है वो दोहरानी पड़ेगी कि जो नहीं रह गई थी। हदीस शरीफ में है कि उमर रदी अल्लाह अन्हो जंग खंदक के दिन कुफ्फार को बुरा भला कहने लगे, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी असर की नमाज अदा नहीं कर सका था कि सूरज डूब गया। उमर रदी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि सूरज डूब गया, मेरी असर की नमाज रह गई, जो है खंदक का मौका था, गज़वा खंदक का मौका। आगे फरमाते हैं कि हम वादी बुथान में उतरे, सूरज गुरूब होने के बाद हमने असर की कज़ा पढ़ी, फिर मगरिब की नमाज अदा की। इस तरह की दलीलें हैं। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस है, उसमें भी ये है, जो नमाजें छूट गई हैं उनके लिए सिर्फ तौबा करना काफ़ी नहीं है, नमाजों को कज़ा लौटाना भी पड़ेगा। अब कज़ा नमाज जो है उसके कुछ आदाब, एक तो ये है कि आदमी हिसाब लगाए, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। यानी बताया कि अभी जो है इंग्लैंड का वाकया है कि किसी ने फरमाया है उन्होंने कि हम जो है 20 साल के हो गए हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुँच गए, अब हमें दो काम करने हैं। एक काम ये करना है कि हमें जो है 2 साल में कुरान हिफ्ज़ करना है पूरा, कैसे करें, और दूसरा काम यह है कि हमारी 5 साल की नमाजें रहती हैं, कैसे हम दोहराएं जल्दी जल्दी। भाई जब ईमान का नूर आता है तो ऐसे सवाल लोग पूछते हैं, रियल क्वेश्चन। अल्लाह ताला जो है तौफीक दे। तो किसी की जो है मिसाल के तौर पे भाई 2 महीने की फजर रह गई, या जो है 6 महीने की कोई ईशा की नमाज रह गई, या 2 साल की जो है पूरे ही नमाजें रह गई, जिस जमाने में बालिग हुए थे मसले मालूम नहीं थे, जो है जो 15 साल की उम्र से आदमी हिसाब लगाता है एहतियातन, तो उनका हिसाब लगाए कि भाई एक दिन की नमाजें होती हैं 6, और उसमें जो है 2 फजर की है, 4 जहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 ईशा की और 3 वितर। 20 रिकतें होती हैं एक दिन की कज़ा नमाज के और तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। तो अगर किसी की 2 साल 5 साल की भी नमाज रहती हो और रोज़ाना जो है वो एक एक दिन की दोहराता रहे, 20 मिनट निकाल ले, 20 मिनट में क्या होता है, हर फर्ज नमाज के बाद 2-4 मिनट निकाल लिए, तो 2-4-5 साल में सब पूरे हो जाएंगे। ये अल्लाह के यहाँ एक टिकट है, कर्ज है, मुनामा अवाल में लिखा हुआ है। उसमें इतनी आसानी दी गई कि भाई हर वक्त जिस वक्त चाहो पढ़ो, तहज्जुद के वक्त, इशराक के वक्त, चाश्त के वक्त, हर नफिल नमाज के वक्त, इतनी आसानी दी गई कि जब और नमाजें मकरूह हैं, यानी फजर के बाद और नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, असर के बाद और नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, कज़ाए उमरी अभी भी पढ़ सकते। सिर्फ 3 वाक़ात जो है वो मना है कि भाई ऐन सूरज निकलने के वक्त, सूरज निकलने से ±15, उस वक्त कोई नमाज मत पढ़िए, सूरज डूबने से 15-20 मिनट पहले कज़ाए उमरी मत पढ़िए। लेकिन किसी की उस दिन की असर की नमाज अगर छूट रही है, सफ़र से आ रहा है, तो वो डूबते डूबते भी किसी वक्त भी पढ़ ले असर की नमाज, उस दिन की उस वक्त भी पढ़ ले, इतनी आसानी दी गई। ऐन जवाल के वक्त, दोपहर का जब जहर के वक्त शुरू होता है, उससे पहले 10 मिनट पहले ±10 वहाँ पर ना पढ़े नमाज। उसके अलावा पूरे दिन रात में जब मौका हो गया वही कज़ाए उमरी पढ़ रहे हैं, इतनी आसानी। और इतनी भी आसानी है कि आदमी बगैर तरतीब के पढ़ ले, पहले फजर की दोहरा ले, ईशा की दोहरा ले, इतनी आसानी दी गई कि जो है फिर यह है कि गैर मुअक्कदा सुन्नत है कभी, यानी जैसे असर से पहले 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, ईशा से पहले 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, उनकी जगह जाके कज़ाए उम्री पढ़ ले, कि यहाँ तक यानी इजाज़त दी गई। आगे वो भी सुन्नतें भी पढ़ ले, कज़ाए उम्री भी पढ़ ले, तो वो क्या ही कहना, बहुत अच्छा। लेकिन किसी को ऐसा है कि बहुत सारी बाकी हैं, अब कहाँ कहाँ से गुंजाइश लाओ, तो जो गैर मुअक्कदा सुन्नतें, नवाफिल की जगह तो पढ़ ही सकता है, गैर मुअक्कदा सुन्नतों की जगह भी जो है पढ़ सकता है। अलबत्ता जो सुन्नत मुअक्कदा है फजर की और फिर मगरिब की और जहर की, उस वक्त जो है उसको जगह पे नहीं पढ़ सकते कज़ाए उम्री, वो तो सुन्नत जो है ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसमें एक अदब ये है कि दूसरों के सामने दिखा के नहीं पढ़े कि मियाँ मैं कज़ाए उम्री पढ़ता हूँ, इतनी एहतियात करे कि यानी घर वालों को ही पता ना चले, किसी कमरे में जाके अपना पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, इशराक पढ़ रहे हैं। मस्जिद में ऐसा ना हो कि इमाम के पीछे मसल्ले पे आके अब 3-3 रकात पढ़ रहे हैं, नमाज शुरू होने वाली है, अब लोग कहेंगे ये तो कज़ाए उम्री पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि लोग देखें उसको, क्योंकि एक अदब है। अल्लाह ने जब अदब रखा कि भाई जाहिर नहीं किया कि हमारी नमाज नहीं नमाज रहती है, तो मस्जिद में अगर पढ़ना है कोने में कहीं जाके 2-2 रिकात आदमी पढ़ ले भाई, फजर की दोहरा ले, तो घर में कहीं जाके 3 वाली, 3 वाली जो है वो घर में दोहरा ले वितर, और उसमें तो ऐसा हो। दूसरे लोग ये समझें कि नवाफिल इशराक तहज्जुद पढ़ रहा है, और खुद ये है कि अपना हिसाब किताब लगा के, और मेरी इतनी बाकी है कहीं वसीयतनामे में कोने में लिख के रखा हुआ है कि अगर रह गई मैं पूरी करता हूँ, कभी रह गई तो अल्लाह ताला जो है उसमें ये फिदिया कबूल फरमा लीजिए। तो ये एक रियल एक चीज़ है और बहुत आसानी से हो जाती है अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए, तो अल्लाह ताला हमें जो है कज़ाए उम्री को जल्द अज जल्द पूरी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा भाई, अब जो है सीरत का एक मजमून पढ़ा जाएगा और इससे मुतालिक है आगे जो है ना ज़बान की हिफाजत और गुस्से की हिफाजत, इसके बारे में आज एक बात पढ़ी जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामलात में कैसे लोगों से मिलते थे जब दूसरा आदमी सख्ती करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी, आपने एक शख्स से ऊँट कर्ज लिया, वो तकाजा करने आया, वापस लेने आया, और बहुत सख्त गुफ्तगु की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बदतमीजी किया कि मेरा ऊँट वापस कर। सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम को गुस्सा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको खामोश फरमा दिया, इरशाद हुआ कि हकदार को कहने का हक है, कहने दो। दूसरी मरतबा एक और आदमी से मामला पेश आया तो उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, उनको बहुत गुस्सा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको ठंडा कर दिया, फरमाया कि तुमको मुझे समझाना चाहिए था ना कि उसको समझाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया। एक यहूदी से ऐसी सूरत पेश आई, वो वक्त से पहले ही मांगने के लिए खड़ा हुआ और बहुत सख्त गुफ्तगू की यानी बदतमीजी की, यहाँ तक कहा कि आप लोगों का तर्ज यही है, हमेशा टालते हैं। सहाबा रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब देना चाहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोश कर दिया। फिर भी उस आदमी की तरफ से सख्ती बढ़ रही थी, मगर उसका जवाब नरमी की ज्यादती और हिल्म और बुर्दबारी से दिया जा रहा था। आखिर वो आदमी कहने लगा कि हजरत, मैं आपकी नबूवत की सब अलामतें सच्ची पा चुका था, सिर्फ एक बात टेस्ट करनी थी, वो ये कि सख्त कलामी और गुस्से के वक्त आप क्या करते। वो टेस्ट भी हो गया, अब मैं जो अपना खादिम बना लीजिए, इस्लाम कबूल करके कलमा पढ़ के मुसलमान हूँ। खाने पीने से मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अखलाक थे, ये किताब है तारीख़ इस्लाम, मौलाना मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखी। खुदा की मामूली नेमत को भी बड़ी नेमत समझते, जो सामने आता वापस नहीं करते, बढ़िया हो या घटिया, न मिलता तो सब्र करते, कई कई दिन गुजर जाते, पेट पर पत्थर बांध लेते, सब्र में फ़र्क ना आता। ऐसा भी हुआ कि महीने गुजर गए और दौलत खाने में चूल्हा ठंडा पड़ा रहा, कुछ भी नहीं पका घर में। जब खाने के लिए बैठते अव्वल हाथ धो लेते, बिस्मिल्लाह पढ़ते, मेज पर बैठ के ऊपर न खाते, न पुरतकल्लुफ छोटे छोटे बर्तनों में, बल्कि एक तश्त खाब में बहुत से आदमी खा लेते, जमीन पर दस्तरखान बिछाया जाता उसी पर खा लेते, अल्लाह की नेमत की बुराई नहीं करते, खाना पसंद आता तो खाते वरना रुक जाते, आयब हरगिज न निकालते, कुछ बोलते नहीं। फारिग होने के बाद खाना उठाया जाता, फरमाते जो दुआ है मशहूर, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अत्अमना सक़ाना जअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें खाना खिलाया, सैराब व शादाब किया और हमें मुसलमान बनाया। ये जो है चूँकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामलात पेश आते हैं, आदमी गुस्सा ना करे और जो है आदमी अल्लाह की नेमतों की कदर करे। एक जो है ये चीज़ पढ़ी जाएगी, बहुत काम की है, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, गुस्से का इलाज। हजरत के पास सवालात आते थे, लोग सवाल लिखते थे और जो है वो गुस्से का इलाज पूछते थे। सवाल के जवाब में फरमाया कि जिस वक्त गुस्सा आए उस वक्त ये सोचिए कि अगर अल्लाह ताला भी मुझ पर इस तरह गुस्सा करने लगे तो आखिर मैं भी चाहूंगा कि माफी हो जाए, तो मुझको चाहिए कि इस आदमी को भी माफी दे दूं। और ये सोचिए कि ये शख्स मेरा इतना खतावार नहीं है जितना मैं अल्लाह का गुनहगार हूँ, फिर जब मैं माफी चाहता हूँ तो इसको क्यों ना माफ कर दूं। अपने आप को समझाए, अपने नफ्स को। दूसरा काम ये करे कि फौरन वहां से हट जाए, यानी जहां पे गुस्सा आया दूसरे कमरे में चले जाए जब तक के गुस्सा दूर ना हो जाए। तीसरा काम ये करें कि कोई एक वक्त मुकर्रर करके अपने अयूब का ध्यान करें, मेरे अंदर क्या क्या शॉर्ट कमिंग है, मेरे अंदर क्या क्या कमी है, अपने आप से बातें करें, मेरे अंदर ये चीज़ कम है, मेरे अंदर ये चीज़ कम है, और सोचा करें कि मैं सबसे कम हूँ। उससे जो है किब्र की जड़ कट जाएगी, कि गुस्से का सबब कभी अक्सर किब्र होता है, यानी आप दूसरे को हकीर समझना। एक जगह फरमाया कि गुस्से का एक इलाज यह है, किसी पर गुस्सा आ जाए तो बाद में उसको कुछ हदिया तोहफा दे दे, उसको हदिया तोहफा दे दे, चाहे थोड़ी ही मकदार हो। एक साहब ने गुस्से का इलाज दरियाफ्त किया तो जवाब में हजरत ने तहरीर फरमाया कि जिस पर गुस्सा किया है तो गुस्सा दूर हो जाने के बाद भरे मजमे में उसके सामने जाके हाथ जोड़िए, पांव पकड़िए, बल्कि उसके जूते अपने सर पर रख लीजिए। एक दो दफा करने से नफ्स को अकल आ जाएगी। हजरत ने एक जगह लिखा है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुस्सा नहीं किया हो, गुस्सा किया हो और पछताए ना हो। हमेशा जिंदगी में ऐसा हुआ कि जब भी गुस्सा किया पछताना पड़ा, हमेशा ही यही नुकसान हुआ गुस्से का। यानी इन्होंने अपने यानी मलफूजात में लिखा हजरत ने, कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुस्सा किया हो पछताए नहीं। कोई आदमी जो है अपने ऊपर काबू में रखे। हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकातहू, उन्होंने एक नुस्खा लिखा है टॉप 10 चीज़ें। अब ये चीज़ें बिल्कुल हम सब की ज़रूरत है, आदमी लिख के कहीं लटका ले, बार बार पढ़े। असल नॉलेज ये है मेरे भाइयों, असल नॉलेज जो है जो रोज़ काम आने की है वो ये है। बाकी इधर उधर के फलसफियाना ख्यालात और हिस्ट्री और तारीख, वो किसी और चीज़ पढ़ते रहेंगे कभी यानी इस्तेमाल भी नहीं होगी ज़िंदगी में, जो बुज़ुर्गों की बातें हैं रोज़ रोज़ इस्तेमाल करने की। फरमाते हैं कि इन चीज़ों को बार बार पढ़िए कि गुस्से के वक्त याद रहें और इन पे अमल हो। पूरी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, गुस्सा आया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वज़ू कर लेना, खड़े हो तो बैठ जाना, बैठे हो तो लेट जाना, जिस पर गुस्सा आ रहा है उसके सामने से हट जाना या उसको हटा देना, दूसरी जगह कमरे में चले गए, दूसरी जगह चले गए, दफ्तर में किसी दूसरे जगह बैठ गए, किसी नेक बंदे की सोहबत में बैठ जाना, यानी कोई अच्छी किताब बुजुर्गों की ले ली, दुआओं की, कोई अच्छा बयान सुनने बैठ गए, अपने आप को मशगूल कर लिया किसी दीन के काम में, जिक्रुल्लाह में मशगूल हो जाना, दरूद शरीफ पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना, गुस्सा चला जाएगा। जहाँ तक मुमकिन हो बात न करना और न कोई मामला करना उसके साथ जिस पर गुस्सा आ रहा है, पोस्टपोन, कभी बाद में बात करेंगे, अभी जो है कोई हद से गुजर जाएगा आदमी। ये सोचना कि गुस्सा ईमान को ख़राब कर देता है, ये सोचना कि मैं भी अल्लाह का खतावार हूँ, अगर मेरी खताओं पर पकड़ें तो नजात पाना मुश्किल है, और दूसरों की खताओं को माफ़ कर दूँ तो उम्मीद है मेरी खता माफ़ हो जाएगी, लिहाजा जिस पर गुस्सा आ रहा है उसको माफ़ करना बेहतर है, डबल फ़ायदा है। और अगर फिर भी हो गया तो आदमी कुछ खैरात करे, कुछ $5-10 खैरात करे, मस्जिद में डाल दे, और कुछ रिकतें नफिल नमाज की पढ़े, तो आहिस्ते आहिस्ते जो है हमारा नफ्स जो है उस पर काबू आ जाएगा कि भाई गुस्सा आता है तो इतना पूरी चेकलिस्ट है, 10 काम मुझको करने पड़ते। तो अब ये चीज़ें हम लोग जो पढ़ते हैं ये बहुत अहम बात है, वो अपने लिए पढ़ते हैं कि भाई मुझको आता है गुस्सा, मेरा क्या इलाज है। इन चीज़ों को पढ़ के कोई आदमी दूसरे अपने किसी और पे और किसी बुजुर्ग पे हुक्म ना लगाने पड़ जाए कि हमने किताब में पढ़ा था आपके अंदर ये है, आप अपनी इसलाह कीजिए, ऐसा नहीं हो। उसके लिए एक ज़रूरी बात मैं पढ़ देता हूँ, वो ये है कि ये सारी चीज़ें हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, बल्कि मैं खुद अपने लिए पढ़ रहा हूँ कि जिन चीज़ों का बयान हुआ उसको दूसरे में तलाश नहीं करें, दूसरों से अच्छा गुमान रखें। मतलब किसी को गुस्सा आ गया, समझे भाई इसकी रात की नींद नहीं हुई है, चिड़चिड़ापन थोड़ा हो गया है, और जो है अभी जो है हो सकता है कोई सेहत में कुछ नीच हो गई हो, ब्लड प्रेशर कुछ हो गया हो, दूसरे को 72 एक्सक्यूजेस देने हैं कि उसको क्यों गुस्सा आया। उसको नहीं कहना है कि नंबर 5 ये है कि वजू किया कि नहीं, मेरे लिए है ये सारा, मुझको आ गया तो फौरन अरे बुजुर्ग ने बताया था कि ऐसा ऐसा करना है, दूसरे के लिए छूट ही छूट है, दूसरे में कभी कोई चीज़ नहीं तलाश करना, उससे बड़ा नुकसान है। दुनिया में जो बदहाली है वो मेरे अपने गुनाहों का वबाल है। बहुत बड़े बुजुर्ग थे जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, लोगों ने जाके शिकायत की कि हजरत बारिश नहीं हो रही, तो बुजुर्ग ने कहा कि शायद मेरे गुनाह की सजा मखलूक को मिल रही है, मैं शहर से चला जाता हूँ, शहर से चले गए बारिश हो। तो भाई जो है एक बुजुर्ग फरमाते हैं जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, अगर मस्जिद में ऐलान हो कि भाई जो सबसे बुरा आदमी है मस्जिद से निकल जाए, कहते सबसे पहले मैं निकल जाऊँ, सबसे पहले मैं निकल जाऊँ। तो जो है ये सारी चीज़ें जो है ना अपने लिए हैं, कभी किसी दूसरे पे हुक्म नहीं लगाना, कभी देखा भी तो दूसरे की बात को टाल देना, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ आप जो है। तो आखिर में जो है हम इंशाल्लाह जो है पढ़ेंगे कि देखिए एक चीज़ का बयान हुआ गुस्से का और ज़बान की हिफाजत का, इस तरह के गुनाह होते हैं जो रोज़मर्रा के, उससे हम किस तरह बच जाएं। बाज़ औक़ात आदमी गुनाह की वजह से जो है महरूम हो जाता है और जो है रिस्क़ ज़ाहरी से रिस्क़ बातनी से इल्म हुनर भूल जाता है, कभी हाफ़ज़ा ख़राब हो जाता है, कभी सेहत ख़राब हो जाती है, कभी अक़ल उल्टी हो जाती है, कभी नेकी की तौफीक छुन जाती है। तो हमेशा जो है गुनाह से इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हमें नेकी की तौफीक दे। हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब दामत बरकातुहू में फरमाते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी से दुनिया और आखरत दोनों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जिस तरह मछली पानी से दूर होकर हज़ारों नेमतों के बावजूद मौत व हयात की कशमकश में मुबतला हो जाती है, इस तरह अल्लाह ताला के दरियाए क़ुर्ब से जो रूह नाफरमानी के सबब दूर हो जाती है वो हर वक्त परेशान रहती है। हकीम उल्लमत ने फरमाया कि गुनाह में जो है नाउमीदी की खासियत है, डिप्रेशन पैदा होगा। क्या हुआ? ओ कहीं पे कोई गुनाह कोई गलती हो गई। गुनाह में डिप्रेशन नाउमीदी पैदा करने की खासियत है, सारी जो है ना मासीक नहीं है। तौबा करने वाले को अल्लाह दोस्त बना लेते हैं, गलती हुई, नदामत हुई, डिप्रेशन हुआ, अब वापस आ गए, अल्लाह को राज़ी कर लिया, वो नामा अमाल से गुनाह भी मिटा देंगे, फरिश्तों को भुला देंगे। करीम बादशाह जो गुनाहों को नेकियों से बदलने पर कादिर हैं, गलती पर पर्दा डाल देते हैं। किसी भी जबान में कह ले आदमी, दिल में तौबा कर ले, ना वजू की ज़रूरत ना क़िबला रू, खड़े बैठे लेटे सोचे कि अल्लाह के दरबार में हूँ, अल्लाह तौबा कबूल फरमा रहे हैं, मुझे भी देखते हैं, अल्लाह से मांग ली, अल्लाह से मांग ली। अल्लाह की रहमत की इतनी इंतहा है, एक किताब है लिखी गई है मौलाना अरसलान साहब ने, गुनाहों का समुंदर और रहमत इलाही की वसअत, उसमें वाक़ियात जमा किए हैं। एक वाकया पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ की बात होगी कि इस्लाम की मोहब्बत रखने से एक आदमी का खात्मा खैर ईमान पर हो गया। ये अशरफुल बयान फी मौजज़ातिल कुरान, ये हवाला दिया है उन्होंने, ये बुज़ुर्गों के तजुर्बात हैं, ये कोई हदीस वगैरह नहीं है। मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक हिंदू बनिया रहता था, हिंदुस्तान की बात है। मौलाना कासिम रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक हिंदू बनिया रहता था, उसकी दुकान से मौलाना के यहाँ सौदा भी आता था। उसका इंतकाल हो गया, मौलाना ने ख्वाब में उसको देखा कि जन्नत में फिर रहा है, तो उससे पूछा कि लाला जी तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम तो हिंदू थे, यहाँ कैसे आ गए, जन्नत मुसलमानों के लिए। तो वो कहने लगा कि मौलवी जी आपकी सोहबत से मुझे इस्लाम से मोहब्बत हो गई थी, असल में दिल से इस्लाम को मानता था, फिर जब मैं मरने लगा तो लोगों ने कहा कि अन कहती कहले, यानी मुसलमानों वाला कलमा कहले, जान आसानी से निकल जाएगी। तो कहता है कि उस वक्त तक फरिश्ते सामने नहीं आए थे, मैंने कलमा पढ़ लिया, फिर वो कबूल हो गया, जन्नत में पहुंच। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत कि जाते जाते दुनिया में एक आदमी पे कर्म हो गया। तो आदमी कितने ही जो है गलतियाँ किसी चीज़ में हो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो, खूब कोशिश करे, खूब मांगे अल्लाह से, हर वक्त जो है अल्लाह से मांगता रहे, मांगता रहे। तो दुआ के बारे में कुछ बातें पढ़ी जाएंगी कि भाई अल्लाह की बारगाह में हर चीज़ के ख़जाने हैं, हर मसले का हल है, वो बहुत करीम हैं, बग़ैर क्वालिफ़िकेशन के देते हैं और बहुत सखी हैं, और सारी दुआएं कबूल होती हैं, बस उसकी शक्लें अलग अलग हैं, कभी यहाँ दे देंगे, कभी वहाँ पर दे देंगे, कभी कोई मुश्किल हटा देंगे। और दुआ में जो है वजू क़िबला बैठे खड़े होने की शर्त नहीं, बग़ैर हाथ उठाए, बग़ैर आँख खोले, बग़ैर मुँह चलाए, हर तरह से दुआ मांग सकता आदमी। अपनी ज़बान मांगे, दिल की गहराई के साथ मांगे, यकीन के साथ मांगे, और दुनिया की चीज़ें मांगना भी इबादत में लिखा जाता है, अल्लाह घर दे दे, अल्लाह सवारी दे दे, अल्लाह अच्छे घर वाले दे दे, ये भी जो है इबादत में लिखा गया, और किसी इबादत में ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ दुआ में ये बात है कि दुनिया की चीज़ें मांगोगे तो इबादत लिखी जाएगी। भाई सदक़ात फ़कीरों को दी जाते हैं, इसलिए आजजी हो, रोना हो, गिड़गिड़ाना हो। और कुरान शरीफ में जो दुआएं हैं वो शाही मजमून है, रॉयल डिक्री, हमारे दरबार में आओ तो ऐसे ऐसे मांगा करो जैसे नबियों ने मांगा है, तो उनको सीखना चाहिए। दुनिया के बादशाह खुश होते हैं तो मामूली चीज़ को गोल्ड में तोल करके उतना गोल्ड देते हैं कि ले जाओ, तो अल्लाह ताला खुश होंगे तो कितना देंगे। सुबह से शाम तक दुआएं करते रहिए, फिर देखिए क्या मिलता है। देने में कोई कमी नहीं है, मांगने वाला रोने वाला होना चाहिए। तो कहते हैं बाज़ बुज़ुर्ग के फ़कीर की तरह प्याला बना के उसे मांगो, हाथ का प्याला, हाथ भी उठाओ, प्याला जो है बनाकर मांगो, उनके दरबार में बड़े से बड़ा बादशाह भी फकीर है और जो है आजीज है और बेबस है, तो अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से खूब मांगना है। तो अब जो है इंशाल्लाह सब दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाह सुबहानहू वताला से ये दुआएं जो है तालीम के लिए पढ़ी जाती हैं, असल ये दुआ है कि आदमी अकेले उठ के इनको मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व आलिही व सल्लम तस्लीमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह हम गुनहगार हैं, या अल्लाह आप बख्शने वाले मेहरबान हैं, या अल्लाह हम गलतियां करने वाले हैं, या अल्लाह आप माफ़ फरमाने वाले हैं, या अल्लाह हम फ़कीर हैं, आप बहुत अता फरमाने वाले हैं, या अल्लाह हमारे अमल कमज़ोर हैं, आप जो है नेकियों के पहाड़ देने वाले हैं, या अल्लाह हम जाहिल हैं, आप ही इल्म और हिदायत देने वाले हैं, या अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, आपके ख़जाने में सब कुछ है, या अल्लाह हम नाशुक्रे बेसब्रे हैं वो फिर भी आप नेमतों पर नेमतें देते हैं, या अल्लाह हमारी तौबा बार बार टूटती है मगर आप अपने दरबार से नहीं निकालते, या अल्लाह हम बेअदबी करते हैं आप फिर भी हमारे ऊपर बहुत मेहरबान हैं, या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हय्यू या क़य्यूम, या अल्लाह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़रत फरमाइए, या अल्लाह उम्मत को बख्श दीजिए, या अल्लाह उम्मत की गलतियों को माफ़ फरमाइए, या अल्लाह उम्मत में जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाइए, या अल्लाह जो तंगदस्त हैं मकरूज़ हैं उनको आसान रिस्क दीजिए, या अल्लाह तंगी से नजात अता फरमाइए, या अल्लाह जो इल्म दीन सीख रहे हैं उनको नफ़ा देने वाला इल्म बरकतें अता फरमाइए, दीन की खिदमत में कबूल फरमाइए, या अल्लाह उम्मत के खौफ को अमन से बदल दीजिए, अल्लाह उम्मत की परेशानी को खुशी से बदल दीजिए, अल्लाह उम्मत की बेइज्जती को इज्जत से बदल दीजिए, अल्लाह हिदायत की हवाएं चला दीजिए, सबको मजबूत ईमान हिदायत तक्वा अता फरमाइए, या अल्लाह उम्मत में जितने अच्छे खैर के काम हो रहे हैं या अल्लाह उनको बढ़ा दीजिए, खैर बरकत दीजिए, या अल्लाह जितने बुरे काम बेहयाई के काम हो रहे हैं अल्लाह सबको ख़त्म फरमाइए, या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या अल्लाह आपकी जितनी रहमतें बरकतें उतरती हैं ख़ास जगह पर ख़ास मुकाम पे खाना काबा दें, या अल्लाह हज उम्रे में अहलुल्लाह की मजालिस में आपकी जितनी रहमतें उतरती हैं मस्जिदों में रात के आखिरी पहर में, अल्लाह हम उनमें से किसी चीज़ के मुस्तहक नहीं हैं, या अल्लाह हम मोहताज हैं, या अल्लाह आप करीम हैं, हमारी मोहताजी को देख के हमें वो सब रहमतें अता फरमा दीजिए, या अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा अगले पिछले पोशीदा अलानिया सब गुनाहों को माफ़ फरमाइए, या अल्लाह सेहत सलामती आसान रिस्क सेहत सलामती अता फरमाइए, या अल्लाह हम बच्चों को सालेह बनाइए, या अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाइए आगे पीछे दाएं बाएं से, या अल्लाह हिफाजत अता फरमाइए, या अल्लाह हर वक्त का जिक्र शुक्र अच्छी नीयतें दुआ नेकियों के पहाड़ अता फरमाइए, या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जात अता फरमाइए, या अल्लाह जिन बुजुर्गों की बातें पढ़ी गई या अल्लाह उनकी बरकत हमें भी अता फरमाइए, या अल्लाह हर किस्म के फितने से शैतान से नफ्स के ख्वाहिशात से या अल्लाह हमें महफूज फरमाइए, या अल्लाह हमारे नेक अमल को कबूल फरमाइए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अलीहि व असहाबी अजमाईन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।